नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों की प्यारी बीवी अनन्या अपनी आत्मकथा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कहानी शुरू होने से पहले एक बात बताऊंगी। मेरे पास एक मेल आई थी। वैसे तो मैं सबका जवाब देने की कोशिश करती हूँ, पर यह मेल ना सबसे अलग थी। इस इंसान का नाम सूरज था। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मैंने कारण जानना चाहा तो उसने मुझे एक लंबी दास्तान बताई जो आपको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। सूरज ने बताया कि जब जब मैं आपकी कहानी पढ़ता हूँ, मेरा लंड कुतुब मीनार बन जाता है और बीवी पर चढ़ाई कर देता हूँ। उस दिन मैं आपको सोचकर अपनी लुगाई को बहुत जोतता हूँ, जिससे मेरी बीवी परेशान हो जाती है और हमारा झगड़ा हो जाता है। उसकी इस बात को सुनकर मैं सूरज जी और ऐसे बहुत सारे लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। वैसे ये कहानी का हिस्सा नहीं था। दरअसल मेरी पिछली सेक्स कहानी को पढ़कर बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी मिड्डी फट गई तो आप घर कैसे आए। तो मैंने आपको सोचा आप लोगों को बता दूं कि मैं उस दिन अपने घर कैसे पहुंची। अपने पिछली जुदाई कहानी में पढ़ा था कि किस तरह राजीव और मयंक ने पब में मेरी पूरी रात जुदाई की, फिर न जाने कब हम सो गए। सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली तो देखा कि दोनों ने मेरी एक टांग पर अपनी पैर चढ़ा रखा है। मयंक का हाथ मेरी चुच्चियों पर है और राजीव का मेरे पेट पर। एक तरफ मयंक, दूसरी तरफ राजीव, दोनों नंगे और मुझसे लिपट कर सो रहे थे। फिर मैंने उनको थोड़ा अलग किया, उठी तो बहुत दर्द हुआ चूतरगांड में। फिर बेड पे देखा तो हम लोगों की रात भर की मेहनत दिखी स्पर्म के रूप में। फिर शरीर देखा तो वहाँ भी पपड़ियाँ जमी हुई थी स्पर्म की। तो मैंने उन दोनों को उठाया। उठते ही मयंक ने मुझे अपनी तरफ खींचा और धड़ाम से मैं उस पर गिर गई। वो मेरे होठों को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी रानी, अब उठो, बताओ मैं क्या पहनकर घर जाऊँ। तो मयंक का फ़ोन आया, पता चला उसके डैड आ रहे हैं। तो वो घबरा के बोला, यार डैड आ रहे हैं यार, निकलना होगा। मैं बोली, निकलना तो है पर मैं पहन कर क्या जाऊँ, साले तुम दोनों ने रात को तो मेरी मिट्टी फाड़ दी। मयंक बोला, यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, दुकान तो खुलेगी भी नहीं और डैड तो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो मैंने मिट्टी देखी तो वो ज़्यादा फटी नहीं थी, सिर्फ पीछे से फटी थी। तो मैंने मिट्टी पहनी, बस चुच्चियाँ निकली हुई थी, पीठ थोड़ी नंगी थी। तो मैंने उस मिट्टी पर बेडशीट ओढ़ ली और बोला, चलो शुक्र है घर तो जाऊंगी। कि फिर कैब बुक की। तो राजीव बोला, अनन्या जी गलत बात है, आपने हम लोगों के लिए इतना किया और अब आप कैब से जाओगी, बिल्कुल गलत है। बोला, वो मुझे घर छोड़ना चाह रहा था ताकि घर देख ले, फिर मौका मिलकर ही छोड़ दे। मैं कहा, चलो चलो फिर। तो उसका तो मन में लड्डू फूट गया, कपड़े पहनकर तैयार हो गया, बोला, रुको मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम नीचे आ जाओ। गाड़ी लेने चला गया राजीव। मयंक आया, मेरे चेहरे को पकड़कर चूमने लगा और मचलने लगा, थैंक यू बेबी इतना ज़्यादा मज़ा देने के लिए, इट्स ओके यार, हम लोग फ्रेंड्स हैं। मैंने भी उसके गाल पर किस कर दिया और अलग हो गई। फिर मयंक ने अपनी अलमारी को खोला, एक लिफाफा निकाल कर मुझे देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? गिफ्ट है। जैसे लिफाफे को खोला तो उसमें उसके पब की मेम्बरशिप का पास था और एक घड़ी थी। ये क्या है? मेरा छोटा सा गिफ्ट। तो मैं गुस्से में बोली, ये सब के लिए नहीं करती मैं, बस थोड़े मस्ती के लिए करती हूँ, ये गलत है। और लिफाफा मैंने बेड पे रख दिया। मैंने अपने लिफाफे को मेरे पर्स में रखते हुए मुझे गले से लगाया और बोला, देखो मेरी जान, या तो रख लो नहीं तो फिर से जोत दूंगा। और साले ने एक उंगली मेरी गांड में डाल दी। बदमाश कहेंगे, कितना जोतोगे, थकते नहीं क्या? मैंने बोला, तेरे जैसे माल को देख कर ना कोई नहीं थकेगा। तभी मयंक का फ़ोन आया, बोलता है, हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, और हम दोनों अलग हो गए। मयंक बोला, जान एक बार दूध पिला दो। अभी नहीं यार, थोड़ा सा। सोच ही रही थी कि वो मेरी एक चुच्ची निकाल कर गोद में उठाकर नीचे ले जाने लगा, अच्छे से चूसा काटा। फिर हम दोनों नीचे आए तो मयंक ने मुझे नीचे कार का गेट खोल कर दिया। फिर हमने अपने नंबर एक्सचेंज किया और मैंने बोला, मिलते रहेंगे, और मैं जाने लगी। तो मयंक ने मेरी गांड पर एक चपेट लगा के बोला, मिस यू बेबी। मैंने भी बोला, मिस यू बदमाश। राजीव बोला, अनन्या जी रात में मजा आ गया ना? मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल। तभी मेरा घर आ गया और मेरी जूत अपनी चरम सीमा पर आ गई। मैंने राजीव को बोला, देखो गाड़ी साइड में लगाओ और जूत में उंगली कर दो। उसने ऐसा ही किया। मैं अभी अपने घर के नीचे थी और पार्किंग में बिल्कुल मदहोश की जूत में उंगली करवा रही थी। कोई आके देख लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। 2 मिनट के बाद मैंने जूत का पानी का छोड़ दिया। राजीव उंगली चाटते हुए बोला, यार तुम कमा लो, मैं हंसकर बोली, वो तो मैं हूँ ही। ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गई। राजू बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। अरे यहाँ तक आए तो घर भी चलो ना, सनी को थैंक यू बोल देना। हाँ यार, सनी का थैंक यू तो बनता है, वो मेरे साथ आने लगा। मैं बोली, सनी को साला ही बोलना, और मान गया। तुम थोड़े से साइड हो जाओ। क्यों? बस साइड हो जाओ ना। मैंने डोरबेल बजाई तो सनी ने बोला, आ गए दोस्तों से चुदवा कर। मैं, दोस्त नहीं जीजू थे तेरे। दा ना कितने जीजू हैं मेरे, तेरे लिए गिफ्ट है क्या? तेरे जीजू तुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाता, राजीव सामने आ गया। तो सनी हंसने लगा, बोला, अच्छा इन्हें लेकर ही आ गई। राजीव ने हाथ बढ़ाकर सनी से हैंडशेक किया और बोला, थैंक यू साले साहब अपनी बहन को चोदने के लिए। ये चादर क्यों लपेटी है, छोड़ो भी। इतने में राजीव बोला, दिखा दीजिए ना नन्या, वो भी तो देखे उसका जीजा कितनी मेहनत करता है। तुम खुद क्यों नहीं बता देते अपने साले को उसकी बहन को पूरी रात कैसे कैसे चोदा और कहाँ कहाँ चोदा। इतना सुनते ही सनी ने मेरे ऊपर से चादर हटा दी। चादर हटते मेरी फटी हुई मिट्टी सारी कहानी बयान करने लगी। इतने में सनी बोली, यार ये क्या करवा कर आई हो? और मिट्टी फटने के कारण वो तुरंत तन से अलग हो गई और मैं उन दोनों के सामने नंगी हो गई। यार दोस्तों, अब आगे जीजा साले ने मिलकर क्या किया वो मैं अगली कहानी में आपको बताऊंगी।